मेरे नौजवान दोस्तों नमस्कार फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के तहत मैं आपसे थोड़ी सी इस मुद्दे पर बात करूंगा कि जो सिविल सर्विस प्री एग्जामिनेशन होता है उसमें किन प्रश्नों को हमें तत्काल छोड़ देना चाहिए। हालांकि इशारे के तौर पर मैं बता चुका हूं, लेकिन अभी मैं उदाहरण के साथ इस पर कुछ चर्चा करूंगा। लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी घटनाओं को जो फिलहाल काफी मुझे महत्वपूर्ण मालूम पड़ती हैं उन्हें देख लेते हैं। आज के अखबारों में आपने पढ़ा होगा, आपको मैंने कल बताया था कि किस तरह से जो चुनाव आयोग है, मद्रास हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की थी कि यह हत्यारा है और इस पर केस हत्या का केस चलाया जाना चाहिए, ये तीखी टिप्पणी मद्रास हाई कोर्ट की थी, उसको लेकर के चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट गया था और उसने इस टिप्पणी के विरोध में, आप यूं कह लीजिए कि अपना विरोध दर्ज कराया था और उस पर बाकायदे सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और सुनवाई करने के बाद कुछ बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं। देखिए, पहली बात उन्होंने कही कि हम जो इस तरह की टिप्पणियां करते हैं, अक्सर इस तरह की टिप्पणियां आपको अखबारों में पढ़ने को मिलती होंगी और ये आपको मालूम भी होना चाहिए। देखिए, टिप्पणी जजमेंट तो होता नहीं है, है ना, वो सुनवाई कर रहे हैं, सुनवाई करने के दौरान जज कोई बात कह देता है। देखिए, जज भी एक आदमी ही है, इंसान ही है, जब उसे कोई बात बहुत बुरी लगती है तो गुस्से में आकर के कह देता है, कुछ और अच्छी लगती है तो प्रशंसा में कह देता है। हालांकि प्रशंसा की नौबत बड़ी कम आती है क्योंकि वहां तो देखिए मामलों की सुनवाई हो रही है, समस्याएं ही समस्याएं हैं। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, जज अपने घर से कुछ सोच कर नहीं आते कि मुझे यह बोलना है, वहां वो बोल जाते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है आपको जिसे नोट करना है वो ये है कि जो न्यायालय टिप्पणी करते हैं उनका भी जो महत्व है किसी भी मायने में, जो फैसले देते हैं उनसे कम नहीं है, टिप्पणियों का अपना महत्व होता है। इसका मतलब यह हुआ कि जब न्यायालय की इस तरह की टिप्पणियां आपको मिलें जो आपके सिलेबस से रिलेटेड दिखाई दे रही हों, तो आपको चाहिए कि आप उन्हें बाकायदे रेफरेंस के साथ नोट कर लें और फिर अपने आंसर में इस्तेमाल करें, ये मेंस में काम आएंगे, प्री में नहीं। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बात साफ तौर पर कही, दूसरी बात कि जो हमारे हाई कोर्ट हैं ये हमारे लोकतंत्र के स्तंभ हैं, है ना, तीसरा स्तंभ कहा ही जाता है न्यायालय को, तो ये हमारे लोकतंत्र के स्तंभ हैं, इनके खिलाफ हम कुछ ऐसा नहीं कह सकते कि उनका मोरल डाउन हो। कहने का मतलब यह था कि अगर हम हाई कोर्ट को कहते, मद्रास हाई कोर्ट को, कि आप अपनी ये टिप्पणी वापस लीजिए या इसके बारे में हम उनसे कुछ पूछते हैं कि ऐसा आप कैसे कहा, आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो उनका मोरल डाउन होगा और ऐसा स्वाभाविक होगा ही, स्वाभाविक तौर पर होगा, तो हम ऐसा तो कुछ नहीं करने जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने अभी निर्णय सुरक्षित रखा है, ठीक है, देखते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय होता है। जब इसकी सुनवाई हो रही थी उस सुनवाई के भी अंश आज के अखबारों में प्रकाशित हुए हैं और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी इस तरह की सुनवाई होती है ना, जब बहस होती है, तो आपको बहस पढ़ने चाहिए। इसलिए नहीं कि उससे आपको सिविल सर्विस में लिखने में कोई मदद मिलेगी, कोई मदद नहीं मिलेगी, लेकिन ये एक बात जरूर है कि आपके दिमाग को सोचने की आदत पड़ेगी और वो ये देख पाएगा कि अरे बाप रे, देखिए ये क्या तथ्य दे रहा है, ये कैसे इस बात को काट रहा है, ये अपनी बात को किस तरीके से रख रहा है, हमने तो ये सोचा ही नहीं था। तो आपका दिमाग सोचने के लिए मजबूर होगा और ये सिविल सर्विस की सफलता की बहुत जरूरी रिक्वायरमेंट है। तो अब आप देखिए कि चुनाव आयोग ने एक अपनी तरफ से पक्ष दिया, उन्होंने ये कहा कि देखिए हमने तो ठीक, हम चुनाव करा रहे हैं, अब रैलियां हो रही हैं, अब प्रधानमंत्री जी रैली कर रहे हैं कहीं बहुत दूर दराज के एरिया में जाकर के और वहां 2 लाख के लोग इकट्ठे हो गए हैं, 2 लाख लोग। अब चुनाव आयोग का तो ये काम नहीं है कि वो उनका प्रबंधन करे, उनको मैनेज करे, लॉ एंड ऑर्डर देखे, या तो स्टेट की जो पुलिस है, जो लॉ एंड ऑर्डर वाले हैं वो देखें, या फिर जो आपदा प्रबंधन से जो संस्थान जुड़े हुए हैं इससे, आपदा प्रबंधन से, वो देखें कि भैया इतनी भीड़ से तो कोरोना बढ़ जाएगा, ये सब मास्क नहीं पहले पहने हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। तो ये हमारा काम नहीं है, यह बकायदे आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए लोगों का काम है। तो देखिए, तथ्य तो चुनाव आयोग ने तर्क तो बहुत सही दिया, है ना, ये वास्तव में उसका काम नहीं है। अब क्या आप चुनाव आयोग ने जो ये बात कही है इस बात के काट में कुछ सोच सकते हैं? आप इस पर सोचिएगा, विचार कीजिए कि अगर आप जज होते सुप्रीम कोर्ट के और चुनाव आयोग आपके सामने अपने पक्ष में यह बात रख रहा होता तो आप उससे और क्या प्रश्न करते, करते भी नहीं करते, या उसके इस उत्तर से संतुष्ट होकर के आप सीधे निर्णय लेते, क्या करते, आप इस पर थोड़ा सा विचार कीजिएगा। दोस्तों, जो दूसरी खबर है दो तीन दिन पहले की है, जीएसटी संग्रहण में काफी वृद्धि हुई है, 1.41 लाख करोड़ रुपए आया है। अब एक विचित्र सी स्थिति आपको लग रही होगी कि भैया कोरोना का समय चल रहा है, लॉकडाउन लग रहे हैं, तो जीएसटी कहाँ से बढ़ गया, क्योंकि जीएसटी का मतलब है कि वस्तुओं का उत्पादन और विक्रय बढ़ रहा है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि खासकर पिछले महीने हमारा जो निर्यात था वो बहुत ज्यादा बढ़ा, तो उससे जीएसटी संग्रहण बढ़ गया है। दोस्तों, आज आपको मैं डॉक्टर भरत झुनझुनवाला का एक लेख उपलब्ध करा रहा हूँ, पेटेंट के ऊपर है, खासकर जो अभी कोवैक्सीन वगैरह बनी है, कोविड वगैरह, इनके पेटेंट को लेकर के है। प्लीज़ आप उस आर्टिकल को पढ़िएगा। अगर मुझे वक्त मिला तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि इस आर्टिकल में कौन कौन से पॉइंट आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा। एक खबर और भी है जो बहुत अच्छी खबर है, देखिए कि प्रबंधन कैसे काम करता है, कि बाकायदे ये कहा गया है कि जो मेडिकल इंटर्नशिप में है उन सब की ड्यूटी कोरोना में लगाई जा सकती है, लगाई जाएगी, और यहां तक कि जो नर्सेस का कोर्स कर रही हैं, क्योंकि अभी हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज की बहुत कमी है, डॉक्टर्स बहुत कम है, सपोर्टिंग स्टाफ जो मेडिकल स्टाफ कहते हैं वो बहुत कम है, तो अभी इनकी सेवाएं लेने की बात कही गई है। लेकिन इसके साथ एक अच्छी बात है, सरकार ने जो कहा है कि जो 100 दिन तक इस तरह की ड्यूटी करेंगे उन्हें बकायदे एक विशिष्ट कोविड राष्ट्रीय सम्मान दिया जाएगा, और सरकारी नौकरी में भी उन्हें इसका लाभ मिलेगा, प्राथमिकता दी जाएगी। तो इस प्रकार से देखिए कि कैसे जो ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी थी, इसके माध्यम से उस कमी को दूर करने में काफी सहायता मिलेगी। दोस्तों, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और वह है किन प्रश्नों को छोड़ें। आपको ध्यान होगा कि इससे पहले मैंने आपसे बताया था कि खासकर जो साइंस के क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी कठिन से होते हैं, और स्पेशली जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं या कॉमर्स के स्टूडेंट हों उनके लिए उन्हें हल करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए जरा भी आपको कठिन लगे तो आप उन प्रश्नों को छोड़ दीजिए। ऐसा केवल साइंस के साथ ही नहीं है, दूसरे प्रश्न भी ऐसे हो सकते हैं जो वाकई में कठिन हों और आपको छोड़ने हैं, क्योंकि साइंस के भी तो कितने क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपको छोड़ने की जो इजाजत है 30 क्वेश्चन तक तो है, जरूरी नहीं है कि आप 30 क्वेश्चन छोड़े ही छोड़े, लेकिन वहां तक आप सेफ रहेंगे, क्रिटिकल सिचुएशन नहीं होगी। तो मैं अब आपको तीसरा प्रश्न पढ़कर सुना रहा हूं जो मेरे डी सीरीज से है, मैं इसीलिए कंटिन्यूएशन में देखी चल रहा हूं, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, मैं अब तीसरे क्वेश्चन पर आता हूं। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्योंकि प्रश्न पढ़ते ही आपके दिमाग को ये लग जाना चाहिए कि नहीं, ये मेरे बिल्कुल बस की बात नहीं है। देखिए, आप जिनमें 2 तक पहुंचेंगे, शुरू में आपका दिमाग उनके बारे में भी कहेगा कि ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन वहां आपको जद्दोजहद करनी है। लेकिन अगर आप सबके साथ इस तरह से जद्दोजहद करने लगेंगे, फिर तो समय जो चाहिए सोचने के लिए वो नहीं रहेगा आपके पास। तो आपको अपने दिमाग को अभी से ट्रेंड करना पड़ेगा कि नहीं नहीं, ये तो इसको तो मैं कर ही नहीं सकता, ये तो बहुत ही कठिन है, ये आपका दिमाग आपको बता दे। उसी के बारे में मैं खासकर बात कर रहा हूं कि किन किन को छोड़ेंगे आप। डी सीरीज का तीसरा प्रश्न है और है, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र, सिंगल इन्वर्टेड में संरक्षित क्षेत्र, देखिए सिंगल इन्वर्टेड में किया है ना, प्रोटेक्टेड एरिया, तो आपको मालूम होना चाहिए कि हम प्रोटेक्टेड एरिया कहते किसको है। पर्यावरण अगर आपका तैयार है तो आप बकायदे समझ जाएंगे कि जो अभ्यारण्य होते हैं, जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, सब प्रोटेक्टेड एरिया कहलाते हैं, है ना। यहाँ आप एक्टिविटीज, जो ह्यूमन एक्टिविटीज है, वो ऐसा नहीं है कि आप ओपनली कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड एरिया। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है। अब आप देखिए कि एक तो संरक्षित क्षेत्र, चलिए आपको मालूम है संरक्षित क्षेत्र, दूसरा दे रहा है कावेरी बेसिन में स्थित है, मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि कावेरी बेसिन का एरिया कौन कौन सा है, पहली बात, और फिर नीचे जो 4 दिए गए हैं तथ्य वो और ज्यादा मुश्किल के हैं, मतलब नॉर्थ और खासकर नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही मुश्किल होगा, हो सकता है कि साउथ के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा आसान हो जाए, हो सकता है कि मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि कावेरी बेसिन जो इसमें जोड़ दिया है वो बहुत ही चैलेंजिंग है, यानी जो इस एरिया होता है तो स्पेसिफिक होता है हिमालय क्षेत्र में कौन सा है, फलाने में कौन सा है, लेकिन यहां तो कावेरी बेसिन दिया हुआ है, मतलब कावेरी नदी का जो बेसिन का क्षेत्र है उसमें स्थित है। इसके बाद 4 नाम दिए हुए हैं, पहला है नागर होले राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, और चौथा है वायनाड वन्य जीव अभ्यारण्य। और इन चार स्टेटमेंट के बाद फिर नीचे कूट दिया गया है, एक और दो, तीन और चार, एक तीन और चार, फिर एक दो तीन और चार। आपको क्या लगता है कि ये आसान है? इस पर आप कितना भी दिमाग लगा लीजिए, मुझे नहीं लगता है कि आप सही तक पहुंच पाए। सही तक तो चलिए आप दो को डिलीट कर पाएंगे। हां, यह बात अलग है कि संयोग से अगर इसमें से कोई जो संरक्षित क्षेत्र है एक दो आपके दिमाग में कौंध गए हों, आपने कहीं पढ़ा हो, अच्छे तरीके से समझ गए हों, तब तो फिर आप थोड़ा सा इसमें मेहनत कर लेंगे कि अच्छा अच्छा ठीक है कि अच्छा एक नहीं हो सकता तो एक किसमें नहीं है, दो नहीं हो सकता तो दो किसमें नहीं है। इसके आधार पर आप थोड़ी सी स्थिति बेहतर बना सकते हैं। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं दोस्तों, तो मैं इसे टच नहीं करूंगा, क्योंकि हम कितने जो संरक्षित क्षेत्र हैं, जो राष्ट्रीय उद्यान हैं, अभयारण्य हैं, इनको कितनों को हम याद रखेंगे, कितनों को पढ़ेंगे। और देखिए, आपको यहां ये भी सोचना नहीं चाहिए कि अरे अरे मैं सारे के सारे याद कर लूंगा, सारे के सारे रट लूंगा तो मेरा एक प्रश्न बन जाएगा। मुझे लगता है कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये तैयारी करने का सही तरीका नहीं है। तो फ्रेंड्स, जहां आपको बहुत ही ज्यादा सघनता दिखाई दे रही है, कुछ प्रश्न में बहुत ज्यादा जटिलता और उलझाव दिखाई दे रहे हैं, जिसके बारे में आपने कभी कुछ खास सुना नहीं है, या यूं कह लीजिए कि एक ऐसा बाउंसिंग बॉल है, ऐसी बाउंसिंग है कि साहब बिल्कुल सिर के ऊपर से गुजर जा रही, पता ही नहीं लगा कि उसने कब बॉल फेंका और कहां बॉल टकराया और कहां चली गई, एकदम बाउंसर है, तो बेहतर है कि हम पूरे आत्मविश्वास के साथ और पूरे हिम्मत के साथ उसे छोड़ दें कि तुम मेरे काम का नहीं हो, चलो हम और दूसरा देखेंगे। ऐसे प्रश्नों को आपको छोड़ते जाना है, और यत आप तभी कर सकेंगे जब आपके दिमाग को इस बात की आदत होगी। अदरवाइज आप उन प्रश्नों को भी छोड़ देंगे जिनके साथ अदरवाइज आप थोड़ा सा समय लगाते तो शायद दो तक पहुंच जाते। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद देता हूं। और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं: आदर्श पाठक कन्नौज उत्तर प्रदेश से, अलका चंदर पंजाब से, अंकित राज मुंबई से, और मुकेश यादव महाराजगंज उत्तर प्रदेश से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।